Sabres.
On demand. Follow Sabres Radio on Twitter and Facebook now.
चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर इस तरफ और आपको ले चलें कहाँ डॉक्टर साहब की तरफ ले चलते हैं मगर पहले जो मुझे ब्रीफ करना है वो मैं कर लूँ. 1260 किलोहर्ट्ज़ टैप डिजिटल रेडियो मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एज वेल sabresradio.com और प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो. मैं अंबर, मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर राजीव वाधवा जी और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे. और आज जो विषय है पिछले कुछ समय से हमने कंटिन्यू रखा है और ये एक ऐसा विषय है जो एक ही हफ्ते में तो पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए एक से ज्यादा तीन चार हफ्ते तो इसे चलना ही चलना था और ये चल रहा है. लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में, तो आज का विषय रहेगा गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज के बारे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी बातें और डूज एंड डोंट्स थोड़ी बहुत जो भी है इसके बारे में विस्तृत जानकारी वो हम लेंगे डॉक्टर राजीव वाधवा जी से. तो सबसे पहले उनका स्वागत किया जाए. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब एंड वेलकम.
थैंक यू अंबर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और सभी सुनने वालों को भी.
और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हफ्ता जो है गुजर गया है बड़ी जल्दी जल्दी और आप एक बार फिर लौट कर आ गए हैं.
दो हफ्ते अंबर जी, बैंक हॉलीडे था पिछले हफ्ते.
जी
टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैविंग फन. जी
फन, चलिए सोचना पड़ा मुझे कुछ देर के लिए. I guess for me fun is as long as I'm working I'm fine.
मुझसे
खाली नहीं बैठा जाता.
That's good. That's good.
तो चलें अच्छी बात है. आपका वीकेंड वगैरह कैसा गुजरा?
बहुत अच्छा अंबर जी.
चलिए बढ़िया ही चाहिए. तो आज हम डायबिटीज के उस मोड़ पर आ गए हैं, उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां आज हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे या डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो या डायबिटीज के चलते गर्भावस्था जिस तरह भी है,
जी,
तो
जी.
किन बातों का ख्याल रखा जाए, कैसे, वो सारी बातें जो हैं अब हमें आपसे ही जानकारी मिलेगी.
जी तो अमर जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है. डायबिटीज बहुत कॉमन है जैसा कि हम जानते हैं, खासतौर पर हमारी एशियन पॉपुलेशन में डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है.
जी.
और हम ये भी बात कर चुके हैं कि हम एशियंस को जब डायबिटीज होती है तो जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो उसके रिस्क होते हैं, उसकी वजह से जो और ज्यादा परेशानियां होती हैं वो हम लोगों में ज्यादा होती हैं बजाय दूसरे एथनिक ग्रुप्स के. तो हमें तो खासतौर पर डायबिटीज का ध्यान रखना चाहिए. तो डायबिटीज में क्या होता है कि जैसा हमने बताया पहले कई प्रोग्राम में कई बार कि इंसुलिन जो केमिकल होता है, एक रसायन होता है शरीर में, हार्मोन होता है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज है या शुगर है, जो शक्कर है वो बढ़ जाती है और उसके लिए हमें इंसुलिन की जो है जरूरत होती है जो हमारी बॉडी में होती है. जब डायबिटीज होती है हमें तो ये इंसुलिन या तो होती नहीं है यानी कि टाइप 1 डायबिटीज में बहुत कम या ना के बराबर या नहीं होती है, और टाइप 2 जिसमें होती तो है लेकिन काम नहीं करती है, इसका इफेक्ट नहीं होता है अच्छा बॉडी के ऊपर. तो दोनों ही वजहों में जब प्रेगनेंसी होती है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो शरीर को, डायबिटीज हो या ना हो, उसको शरीर को ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है.
जी.
तो प्रेगनेंसी में तो जो डायबिटिक मरीज होते हैं, होती हैं महिलाएं, उनको फिर उनके चूंकि इंसुलिन चाहिए तो ज्यादा, लेकिन इंसुलिन आपके शरीर में या तो है नहीं है तो वो काम नहीं कर रही है, तो उनकी जो शुगर होती है, जो उनका शुगर कंट्रोल होता है वो काफी बढ़ने लगता है और फिर इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. अगर आपकी डायबिटीज आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं है तो उससे आपको और आपके बच्चे दोनों को काफी नुकसान हो सकता है. तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी कोशिश करें कि अनप्लान प्रेगनेंसी ना हो. आप प्लान करें कि प्रेगनेंसी कब होनी है और उस समय डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है, और आपको जब अगर प्रेगनेंसी है, आपको डायबिटीज है, प्रेग्नेंट आप हो जाती हैं, तो आपको ज्यादा चेकअप की जरूरत है, आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे को आप स्वस्थ रहें, बच्चा हेल्दी हो, आगे चल के बच्चे को और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसमें दो तरह की तकलीफें आती हैं. एक तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज. गेस्टेशनल का मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान. तो ये वो डायबिटीज है जो आप जब गर्भवती जो महिलाएं नहीं थी उस समय उनको डायबिटीज नहीं थी, पहली बार गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में आपको जो है ये डायबिटीज हो जाती है. आमतौर पर, सबको नहीं लेकिन आमतौर पर डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाती है. और फिर आपको हो सकता है कि डायबिटीज ना हो और फिर अगली बार जब आप फिर प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो हो सकता है कि फिर ये गेस्टेशनल डायबिटीज फिर हो जाए। इस स्टेशनल डायबिटीज में जो डायबिटीज के रिस्क हैं वो उतने ही ज्यादा हैं जो कि उन महिलाओं को है जिनको पहले से डायबिटीज थी। तो जो डायबिटिक महिलाएं कई सालों से उनको डायबिटीज है फिर वो प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनको जो रिस्क होते हैं वही रिस्क इस गेस्टेशनल डायबिटीज के मरीजों को होते हैं कि और रिस्क के बारे में आगे में हम अभी और डिटेल में बात करते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो किन महिलाओं को होती है? तो एक तो जितनी ज्यादा उम्र होगी महिला की उनको उतना ज्यादा रिस्क होता है कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज हो। तो अगर आपकी उम्र 30 है 35 है और ज्यादा है तो आपका रिस्क ज्यादा है और कम उम्र पर ये रिस्क कम होता है। और दूसरा वजन से होता है। ओवरवेट हम लोग हमेशा से जिक्र करते आ रहे हैं कि ओवरवेट और डायबिटीज का बहुत नजदीक का रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। तो जो महिलाएं ओवरवेट हैं जिनका बीएमआई 30 से ऊपर है तो और वो महिलाएं जो सिगरेट भी पीती हैं तो अगर आप सिगरेट पीती हैं अगर आपकी आपको मोटापा है ओवरवेट है बीएमआई 30 से ज्यादा है ओबिसिटी है और अगर आपकी उम्र ज्यादा है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस समय तो आपको ये रिस्क कि आपको डायबिटीज एक नई डायबिटीज गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाएगी। अगर आपको पिछली प्रेगनेंसीज में ये हो चुकी है गेस्टेशनल डायबिटीज तो आपको इस बार भी ज्यादा रिस्क होगा अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं। अगर आपकी दो प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल कम है जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको रिस्क ज्यादा है। वो महिलाएं जिनको पहले स्टिल बर्थ यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित नहीं होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो जिनको पहले ये होता है और जिसमें कुछ कारण पता नहीं लगता अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं अगर जिन महिलाओं को पहले हुआ है तो हो सकता है कि इस बार उनको जब दोबारा प्रेग्नेंट हो तो उनको ये गेस्टेशनल डायबिटीज हो। अगर वो महिलाएं जिनको पहला बच्चा बहुत हाई बर्थ वेट का था काफी बड़ा बच्चा जिसे कहते हैं पैदा होते ही 4.5 किलो या उससे ज्यादा अगर उसका वजन था तो उनको भी इस चीज का रिस्क ज्यादा होता है। वो महिलाएं जिनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स यानी माँ बाप भाई बहन जो हैं उनको अगर डायबिटीज है तो आपको अगर डायबिटीज नहीं भी है लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये रिस्क ज्यादा है कि आपको ये डायबिटीज हो सकती है। और साउथ एशियन लोगों में ब्लैक कैरिबियन लोगों में मिडल ईस्टर्न लोगों में ये रिस्क ज्यादा होता है कुछ एथनिक ग्रुप में तो ये वो लोग हैं जिनको ये ज्यादा हो सकता है। तो इसमें अधिकतर चीजें तो वो हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन हाँ ये सिगरेट अगर आप पीते हैं आपका वजन ज्यादा है और आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो आपको प्रेगनेंसी थोड़ा सा प्लान करके अगर आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही हैं तो सिगरेट छोड़ सकते हैं वजन कम करने के बारे में बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पता कैसे चलता है डायग्नोसिस कैसे होता है? तो इसका डायग्नोसिस जो है ब्लड शुगर चेक करके होता है और एक टेस्ट हम लोग कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी शॉर्ट में कहते हैं उसको। और इसमें ये होता है कि जब भी ये हर महिला का जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो मिडवाइफ के पास अपनी सर्जरी में जाना शुरू करती हैं दिखाने के लिए तो जब पहली बार आपका टेस्ट होता है आप पहली बार जब मिडवाइफ के पास जाती हैं उसके कुछ समय बाद ही या उस दिन आपका जो है ये जीटीटी टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि एक आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं खाली पेट और फिर एक आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा ये जो है टेस्ट लिया जाता है। तो ये हम करते हैं और इसके बाद कई बार इसको रिपीट किया जाता है 24 से 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में और उसमें रीडिंग्स होती हैं और फिर आपको अगर ये गेस्टेशनल डायबिटीज बन रही है तो आपको जो है ये बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है और फिर इसके लिए कुछ किया जाता है। तो ये अगर हो जाती है तो उसके जैसा मैंने बताया रिस्क बहुत ज्यादा है, आपकी जान को खतरा है, आपके बच्चे की जान को खतरा है और आने वाली जान का खतरा तो है ही है लेकिन अगर सब ठीक भी हो जाता है तो भी आगे चलकर रिस्क है कि आपको डायबिटीज हो सकती है या आपके बच्चे को और हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं इनके बारे में ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो ब्रेक की तरफ मुड़ने से पहले हम क्रिकेट अपडेट की तरफ आपको ले चलेंगे और क्रिकेट अपडेट के बाद छोटी सी ब्रेक और फिर हम जल्द ही लौट कर आते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो डॉक्टर साहब के लिए आज के विषय से जुड़ा हुआ, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और गर्भावस्था और डायबिटीज से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, या वैसे सामान्य डायबिटीज से भी जुड़ा हुआ अगर कोई है, तो ऐसा प्रश्न जिसका जवाब पहले ऑलरेडी नहीं दिया गया है, तो वो प्रश्न आपके जहन में है तो आप हमसे वो सवाल कर सकते हैं। मगर पहले चलिए अब हम इस तरफ मुड़ चले।
ICC Cricket World Cup 2019 updates brought to you on Sabres Radio.
Sabres. Okay, let's take a quick look at the update here. और जैसा आप जानते ही हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, 30 मई से शुरू हो चुका है और आज का मैच है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड दैट्स बीइंग प्लेड एट द ट्रेंट ब्रिज। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि टॉस इंग्लैंड ने जीता और क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग का फैसला लिया इन्होंने, और ऐसे में पाकिस्तान की टीम का जो स्कोर है, स्कोर काफी बढ़िया नजर आ रहा है, 73 विदाउट लॉस एंड दैट्स द स्कोर इन 11.1 ओवर्स टू बी प्रिसाइज। और जैसे जैसे अपडेट है ये हमारे सामने, हम आपको हर भाग में दे रहे हैं, तो इंतजार कीजिए हर भाग का। मिलती हूँ कुछ ही पल में डॉक्टर साहब के साथ, लौट कर आती हूँ। चलिए लौट कर आते हैं यहाँ पर और इस समय डॉक्टर राजीव वाधवा जी मेरे सामने हैं, मैं अंबर और डॉक्टर साहब, चलिए बातचीत को जहाँ छोड़ा था डॉक्टर साहब वहीं से पिक करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज या डायबिटीज और गर्भावस्था जब साथ साथ
दोनों चीजें,
तो क्या किया जाए, कैसे?
जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब डायबिटीज होती है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये कि वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी पहले से पता है कि डायबिटीज है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे।
ठीक है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि एक बार आप जिस फ्लो में होंगे मैं नहीं चाहूंगी कि उस वक्त फ्लो टूटे, तो अब क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक आ ही चुका है, जिन महिलाओं को पहले से डायबिटीज हो या जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उन्हें हो जाती है डायबिटीज, तो बच्चा जो आने वाला है उसके डायबिटिक होने के कितने चांसेस?
काफी चांसेस हैं, और वही मैंने कहा कि आगे बात करते हैं उसके बारे में कि बच्चे को और माँ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, कि ये वो डायबिटीज है जो पहले नहीं थी महिला को, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब पहली बार पता चलता है कि वो उनको ये हो गई है। तो इसको पता लगने के बाद इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि हर डायबिटीज का है, पहला ट्रीटमेंट दवाइयां नहीं है, पहला ट्रीटमेंट है कि आप डाइट पे अपना ध्यान रखें, और उम्मीद है कि हम आगे चल के आज डाइट के बारे में भी बात करेंगे, और एक्सरसाइज करें। ये दो पहले ट्रीटमेंट होते हैं डायबिटीज के, एक्सरसाइज और डाइट, वजन कंट्रोल, अगर आप डाइट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो वजन थोड़ा कम होता है, वो भी एक ट्रीटमेंट है। और लेकिन हो सकता है कि डिपेंड कितना है, कितनी डायबिटीज है आपको, तो आपको दवाइयां दी जा सकती हैं, गोलियां दी जा सकती हैं, हो सकता है इंसुलिन भी लगाई जाए। तो इससे, इंसुलिन से और दवाइयों से फिर शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया जाता है, और उसको फिर डिलीवरी के बाद आम तौर पर यह होता है कि ये दवाइयां बंद हो जाती हैं, और आम तौर पर अधिकतर महिलाएं जो हैं उनको ये डायबिटीज कंटिन्यू नहीं होती है, कम महिलाओं को कंटिन्यू होती है। लेकिन उनको ये रिस्क है कि जब अगली बार फिर वो दोबारा डायबिटीज, जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होंगी तब फिर उनको ये डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, बीच में भले ही ना रही हो। और इन महिलाओं को ये रिस्क भी होता है कि आगे चलकर उनको प्रेग्नेंसी या नो प्रेग्नेंसी फुल डायबिटीज प्रॉपर उनको हो सकती है। तो जिन महिलाओं को ये गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हुई है और फिर डिलीवरी के बाद ठीक हो गई है, उनको फिर भी बहुत ध्यान रखना है। उनको ये देखना है कि उनका वजन लिमिट में रहे, ओवरवेट नहीं हो, क्योंकि अगर ओवरवेट होंगी तो अगली प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होगी, या वो प्रेग्नेंट नहीं भी मान लीजिए होती है दोबारा इसके बाद, लेकिन आगे चलकर डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो उनको अपने वजन का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जैसा कि हम कई बार कहते हैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन, कम से कम 30 मिनट ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी सांस फूले, थोड़ा पसीना आए, थकान आए, मिनिमम आप करनी चाहिए, इससे ज्यादा करें तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम इतना। वो अगर सिगरेट पीते हैं तो उनको बिल्कुल सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे वाली प्रेगनेंसी में ये फिर रिस्क ज्यादा होता है। और उनको अगली प्रेगनेंसी थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना है कि अगर एक बच्चा हुआ है उन्हें फिर दूसरे बच्चे का प्लान करना है, तो ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा अगर जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें इस डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, तो टाइम दें आप उसमें बीच में थोड़ा सा। और आप जो है आपका 6 वीक चेक जो होता है महिलाओं का, हर महिला का बच्चा होने के बाद 6 से 8 वीक के बीच में वो जाते हैं अपनी सर्जरी में, वहां पर उनका चेक किया जाता है और उसमें इन महिलाओं का फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि डायबिटीज जो हुई थी गर्भावस्था के दौरान बच्चा होने के बाद अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है कि नहीं। और उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपको ये गेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाया गया है, आपको गर्भावस्था में डायबिटीज हुई है, तो हर साल चाहे आप आगे प्रेग्नेंट होती हैं या नहीं होती हैं उससे कोई मतलब नहीं, पूरी लाइफ आपको हर साल डायबिटीज का चेक कराना है कि आपको डायबिटीज तो नहीं हो गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको रिस्क ज्यादा है कि आगे चल के आपको डायबिटीज हो सकती है, तो आपको हर साल चेक कराना है कि आपको डायबिटीज हुई है कि नहीं। तो आमतौर पर सर्जरीज में सिस्टम होता है, हम लोग बुलाते हैं आपको हर साल कि आप आइए और अपना ब्लड टेस्ट कराइए, लेकिन ऐसे फुल प्रूफ 100% सिस्टम नहीं होते हैं ये, तो आप ध्यान रखें, इस वजह आप इस पर डिपेंड ना करें कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया तो मैं नहीं गई। आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये डायबिटीज थी गर्भावस्था में तो आप अपने कैलेंडर में अपनी डायरी में बच्चे के जन्मदिन के दिन, आपको तो भूलेगा कभी नहीं, आप ध्यान रखें कि साल हो गया है अब हर साल अपने बच्चे के जन्मदिन पर आपने जो है अपना ब्लड टेस्ट कराना है कि डायबिटीज तो नहीं हो रही है। तो ये उन महिलाओं के लिए जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाती है, ये उनके बारे में। उन महिलाओं की बात करते हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है और अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको क्या करना है, तो रिस्क क्या है मैं आगे भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले बताएं कि उनके लिए अगर आपको डायबिटीज है और आपकी उम्र ऐसी है, आपकी फैमिली आप प्लानिंग कर रही हैं कि बच्चा होना चाहिए, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि आप अनप्लान प्रेगनेंसीज को अवॉइड करें, आप प्लान करें कि जब बच्चा आपको कब चाहिए और कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसके बारे में आप अच्छे से पूरा ध्यान दें, और ये नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, डायबिटीज बहुत कंट्रोल है आपके लिए, वैसे आपकी लाइफ में और कुछ जो भी चल रहा है वो टाइम ठीक नहीं है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो फिर और कॉम्प्लिकेशंस उससे बढ़ते हैं, तो आप प्लान करें कि कब सही वक्त है। और प्रेगनेंसी के पहले अच्छे से जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो तब आप प्लान करें, और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आपका ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल रहता है तो फिर जो ये रिस्क होते हैं, जो मरा हुआ बच्चा पैदा होने के रिस्क होते हैं, स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं, मिसकैरेज अबॉर्शन जो होते हैं, या बच्चों में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, वो कुछ तकलीफों के साथ, बीमारियों के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जो है उनका जन्म होता है, उसका रिस्क आप कम कर सकते हैं। और न्यूनेटल डेथ की, पैदा होने के कुछ ही समय बाद अगले कुछ दिनों में या महीनों में बच्चे की कई बार मृत्यु हो जाती है अगर माँ को अनकंट्रोल डायबिटीज रही है, तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है। तो आपको बात डायबिटीज में घूम फिर कर वहीं आती है, आपको डाइट पर पूरा कंट्रोल करना है, आपको वजन का ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बच्चा करने की सोच रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो आपको अपने जीपी से या प्रैक्टिस में नर्स से, डायबिटीज नर्स से आप पूरा ध्यान रखें कि आपके ब्लड टेस्ट हर टाइम पे हुए हों, 6 महीने में या साल भर जैसे भी आपके जीपी बताते हैं, आपकी यूरिन टेस्ट हो रही है, आपकी आंखें टेस्ट हो रही हैं, आपके फुट टेस्ट हो रहे हैं, आपके अगर क्लिनिक में, जीपी में या हॉस्पिटल क्लिनिक में, स्पेशलिस्ट क्लिनिक में कोई भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपने कोई मिस नहीं किए हैं, आप बहुत अच्छे से इसको प्लान करके तब आप प्रेगनेंसी का सोचें। अगर आप अगेन प्रेगनेंस होने की सोच रही हैं तो ये हर महिला को सलाह दी जाती है कि आप फॉलिक एसिड लें, जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले ली जाती है ताकि आपके शरीर में, डायबिटीज में कहा जाता है कि 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लें, और प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक उसको जो है आप जरूर लें। और अगर आपको डायबिटीज आपको है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको आपकी जो मिडवाइफ है या आपको स्पेशलिस्ट क्लिनिक में जरूर रेफर किया जाएगा, वो आपको और सलाह देंगे, उसमें यूरिन चेक करने के लिए आपको रेगुलर स्ट्रिप्स दी जाती हैं, आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप स्मोक करती हैं तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको डायबिटीज भी है, आप स्मोक भी कर रही हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट भी हैं तो बच्चे के ऊपर और आपकी जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. तो बिल्कुल सिगरेट करने पीने के बारे में आपको सोचना है. अल्कोहल आपको बंद कर देना है या बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम कर देना है अगर आप अल्कोहल लेती हैं उस प्रेगनेंसी के दौरान. और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है बच्चे के लिए. तो हम हमेशा ही कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी होती है. लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपको आपकी डायबिटीज का कंट्रोल बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर होगा और आपका वजन कम करने में उसकी सहायता भी मिलेगी. तो वो भी बहुत जरूरी है. तो आप पॉजिटिव रहें कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करनी है. तो ये रिस्क क्या है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, चाहे पुरानी डायबिटीज है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, या आपको डायबिटीज नहीं भी थी लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपको डायबिटीज हो गई है, तो वो रिस्क क्या हैं? तो ये जो है रिस्क हैं, एक प्री मैच्योर बर्थ की बच्चा जो है जल्दी, जिसे हम कहते हैं अर्ली हो जाता है. हम जानते हैं कि जब बच्चा टाइम से बहुत पहले अगर हो गया तो उसकी जान पर काफी खतरा रहता है, वो स्वस्थ नहीं रहता है, आगे चलकर भी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं. तो प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, मिसकैरेज या अबॉर्शन जिसे हम कहते हैं उसका हाई रिस्क होता है, या बच्चा आगे चलकर प्रेगनेंसी में उसकी बच्चे के अंदर ही डेथ हो जाती है जिसे स्टिल बर्थ कहते हैं. बच्चे जो है काफी हाई बर्थ वेट होते, बड़े होते हैं वो, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, दे आर बिग बेबीज. और जितना बड़ा बच्चा होगा जाहिर है कि फिर जब डिलीवरी होती है उस समय ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन करने का ज्यादा रिस्क हो सकता है. हो सकता है कि बच्चे के अराउंड बहुत ज्यादा फ्लूइड हो, जो पानी होता है इसे पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं, वो हो सकता है. कई तरह के इन्फेक्शन आपको या बच्चे को हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये इन्फेक्शन कई बार सीवियर भी हो सकते हैं. और सिजेरियन सेक्शन जैसा मैंने कहा कि उसका रिस्क बढ़ जाता है सिजेरियन सेक्शन का. बच्चे को क्या रिस्क हो सकते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं, मेलफॉर्मेशन जो होते हैं कि कोई हार्ट की तकलीफ है, कोई पेट में कोई प्रॉब्लम है वगैरह, वो रिस्क ज्यादा होता है ऐसे बच्चों में जिनकी मां डायबिटिक होती है और अच्छा कंट्रोल नहीं होता है. बच्चों को हो सकता है कि लो ब्लड शुगर हो जाए एकदम से जब डिलीवरी के बाद, और वो काफी रिस्की हो जाता है. सांस लेने में बच्चों को उनको तकलीफ हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको. जॉन्डिस जो पीलापन होता है, पीलिया, उसको वो भी हो सकता है. डिलीवरी के दौरान बच्चे माँ को तो इंजरी या चोट लगी सकती है क्योंकि बच्चा काफी बड़ा है, बच्चे को भी चोट लग सकती है. और ये जो बच्चे होते हैं जिनकी माँ का डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है उनकी डेथ का रिस्क जो है काफी हाई होता है. माँ के लिए भी रिस्क होता है डिलीवरी के बाद भी, कि डिलीवरी के बाद उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उनको ब्लड क्लॉट जो खून के थक्के जम जाते हैं जानलेवा हो सकते हैं, वो उसका हाई रिस्क होता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाए ये भी हो सकता है. कीटो एसिडोसिस एक बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, वो हो सकती है. या कई बार ब्लड शुगर एकदम से ड्रॉप भी हो सकती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है. और जो डायबिटीज के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हम पिछले हफ्तों से बात करते आ रहे हैं, किडनी फेल होना, आंख की प्रॉब्लम, नजर का चला जाना, तो वो और बढ़ सकती हैं. तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप पूरी बहुत अच्छे से उसकी सलाह समझें, अपनी मिडवाइफ से बात करें, आपको डायबिटीज क्लिनिक में रेफर किया जाएगा, आप स्पेशलिस्ट की बात समझें, और जो भी ट्रीटमेंट्स आपको बताए जाते हैं उसमें करें. जब जब आपको चेक के लिए बुलाया जाता है तो आप चेक करें, डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें. और ये जरूरी है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा घर पे ही होना होता है, लेकिन इन बच्चों को जो डायबिटीज है जिनकी माँ को, उनको हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए बर्थ के टाइम पे. तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज महिलाओं को, इसमें आप ये सुन के ना डरें कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप यंग हैं तो आपको बच्चा नहीं हो सकता है, आपको बच्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि आप उसके बारे में सोचें, उसको प्लान करें, अपने डॉक्टर से उसके बारे में बातचीत करें, सारी प्रिकॉशंस लें और तब आप उसकी तरफ बढ़ें, अनप्लान्ड बिना सोचे समझे उस तरफ मत जाएं.
ठीक है, तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे. लेकिन एक सवाल जो है जहन में आ रहा था आपकी बातें सुनते सुनते, और बातें सुनते सुनते ही वो जहन से सरक भी गया है. आई होप कि मुझे दोबारा याद आ जाए कि मैंने आपसे क्या पूछना था. डायबिटीज, हाँ याद आ गया. एक्सरसाइज जो कही जाती है कि जरूरी है
जी,
तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाएं जो हैं उन्हें डर भी लगता है एक्सरसाइज करते हुए, और कुछ महिलाएं जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं। तो किस तरह की एक्सरसाइज उनके लिए सही है और उन्हें किस दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर थोड़ा सा आपको वक्त मिले टुवर्ड द एंड तो थोड़ा सा इसको भी हम शामिल करें।
आप चाहे तो मैं अभी बता देता हूँ, बहुत छोटा सा इसका जवाब है कि एक्सरसाइज जो होती है प्रेगनेंसी में, चाहे डायबिटीज है या नहीं भी है, अच्छी होती है, एक्टिव रहना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं कि हम तो 5 मील दौड़ते हैं या ट्रेडमिल के ऊपर या वजन उठाकर बहुत ज्यादा, उसमें आपको थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। आपको हल्की एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा, ये नहीं कि आप 12 मील मैराथन हाफ मैराथन रन करने जा रहे हैं या आप 45 मिनट ट्रेडमिल पर फुल फास्ट उस पर कर रहे हैं, वो शायद अच्छा नहीं है। हल्की एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल वॉक काफी अच्छी है, ब्रिस्क वॉक आप करें, और उसमें कोई दौरान नहीं है, किसी प्रेगनेंसी के किसी भी आखिरी एंड तक जो है आप कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो तो बहुत अच्छी है, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज है तो फिर बहुत और ज्यादा जरूरी है।
ओके, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे लगा मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि कई घरों में हमने देखा है कि कुछ जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उन्हें इससे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन कुछ होती हैं कि वो हर बात पे टोकती हैं, ये मत करो वो मत करो।
तो बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि अब आप बहुत भारी वजन उठाएं और इधर उधर चलें, तो वो अवॉइड थोड़ा करना है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप सारा दिन बैठे रहें और कोई काम ना करें, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको थोड़ी एक्सरसाइज फिटनेस मेंटेन रखनी
है, और अगर श्योर ना हो तो फिर वो अपने डॉक्टर से या हेल्थ विजिटर से पूछ सकते हैं।
क्योंकि हेल्थ विजिटर आपको पूरी गाइडेंस देंगे उस बारे में,
ठीक है, क्योंकि बिना पूछे ना करें तो ही बेहतर है, बिकॉज आफ्टर ऑल सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब चलिए हम लोग लौट कर आते हैं अभी कुछ ही देर में, आप लोग आसपास ही रहिएगा, दूर बिल्कुल मत जाइएगा, मैं यूं गई और यूं आई, आपको आसपास ही रहना है। और अगर कोई प्रश्न हो अगले 5 मिनट में आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही पल में। अरे चल ये चीज अटकी गई है, तो चलिए मैं जबान ही बोल देती हूँ। 1260 किलोहर्ट्ज़ आपका अपना सब्रस रेडियो, टॉप डिजिटल रेडियो, मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन भी सुने जा सकते हैं कार्यक्रम। मैं लौट कर आती हूँ गोल्डन सॉन्ग के बाद, डॉक्टर साहब के साथ वापस आते हैं हम, तो आप लोग आसपास रहिएगा। थैंक यू। तो डाइट वगैरह की अब बात बाकी रह गई है, आखिरी हमारे पास जो 15-16 मिनट रह गए हैं इस दौरान वो बातें कर लेते हैं।
जी अंबर जी, तो प्रेगनेंसी की बात तो जैसा हमने अभी खत्म की, तो डायबिटीज में हम पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार हर बार यही बात कहते आ रहे हैं कि जो उसका पहला इलाज है, जो पहला ट्रीटमेंट है, वो दवाइयां नहीं है, गोलियां या इंसुलिन नहीं है। पहला ट्रीटमेंट होता है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, आप अपना वजन कम करें। तो ये 3 चीजें जो हैं पहले होती हैं और तब हम दवाइयों की तरफ आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में जाहिर है, टाइप 1 तो वो होती है जो बच्चों में होती है, बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है, और उसमें तो फिर पहले दिन से ही इंसुलिन लगती है, वो एक अलग बीमारी है। तो डाइट का कोई अंत नहीं है। मैं अभी बात कर रहे थे कि हम लोग चाहें तो 2-3 दिन उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं एक एक चीज के ऊपर, खासतौर पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये वाली सब्जी या ये वाली करी अच्छी है कि नहीं है और ये खाना चाहिए कि नहीं है, मैं आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ डाइट के। तो मेन प्रिंसिपल ये है कि आपको जो आपकी डाइट है वो कैलोरीज उसमें कम होनी चाहिए, उसमें शुगर कम होनी चाहिए और उसमें फैट कम होना चाहिए, उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए जितना जरूरी है, फाइबर होना चाहिए, रेशा जो रफेज होता है वो होना चाहिए, और आपको जो रोज विटामिन और मिनरल्स चाहिए वो होने चाहिए। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स में क्या होता है कि ये इसमें ये सारे गुण हैं, इसमें कैलोरीज और फैट कम है, इसमें फाइबर अच्छा होता है, इनमें विटामिन और मिनरल भी होता है। तो ये 5 फ्रूट a day, 5 a day हम लोग सुनते आ रहे हैं कई सालों से, सबको पता है। तो हम कहते हैं कि 5 फल जो है हमें, फल और सब्जी मिलाकर 5 पोर्शन जरूर खाने चाहिए रोज। इसमें हम कहते हैं कि आपको रेनबो कलर, रेनबो माने जैसे इंद्रधनुष का रेनबो का कलर होता है, तो अलग अलग रंग के आप सब्जियां और फल खाएं, क्योंकि अलग अलग रंगों के हिसाब से उनमें अलग अलग मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन खाते हैं तो आपको जो है सब विटामिन और सब मिनरल्स मिलते हैं। तो आप हरा, लाल, पीला, सब जितनी तरह के हैं सब्जियां और फल मिलाकर खाएं। कोई फ्रेश, कोई जरूरी नहीं है कि वो फ्रेश ही होना चाहिए, आप वो फ्रेश भी हो सकता है, फ्रोजन हो सकते हैं, फ्रोजन की जो क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और कैन में हो सकता है जो टिन आते हैं, या ड्राई फ्रूट हो सकता है सूखे हुए जो होते हैं। सूखे हुए आपको थोड़े कम खाने हैं क्योंकि उनमें जाहिर है कि वो कंसंट्रेटेड हैं, पानी उनसे निकल चुका है, ड्राई है वो, तो कई बार ज्यादा खाया जाता है। तो जब हम पोर्शन की बात करते हैं आगे करेंगे, लेकिन जहां आप ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट माने किशमिश जो है, रेजिन्स या एप्रिकॉट है, अंजीर है, फिग्स जो है, या और दूसरे आम है, पाइनएप्पल है, आजकल कई तरह के ड्राई फ्रूट मिलते हैं। तो ये जब आप खाते हैं तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन, 30 ग्राम दो चम्मच के बराबर जो है, दो बड़े चम्मच के बराबर, उतना ही आपको खाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर उसमें शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है। आप जो फ्रूट, हम कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन डायबिटीज के लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि कई फ्रूट्स में शुगर बहुत ज्यादा होती है, और वो फ्रूट चीनी खाने से शायद उतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी शुगर तो शुगर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फल खा रहे हैं और आपने 5-6 बड़े बड़े मीठे आम खा लिए, या एक पूरा पाइनएप्पल खा लिया, या काफी सारे अंगूर खा लिए जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, तो वो आपके लिए बुरा ही है, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नेचुरल है या वो फ्रूट है तो इसलिए आपके लिए अच्छा ही है, आपके लिए वो भी बुरा हो सकता है। खासतौर पर जब आप फ्रूट जूस या स्मूदीज वगैरह पीते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि फ्रूट जूस में बहुत हाई शुगर होती है, और आपने अगर 2-3 गिलास जूस पी लिया, चाहे किसी भी फ्रूट का, तो उसमें इतनी ज्यादा शुगर है कि आपकी डायबिटीज को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको फ्रूट जूस से तो थोड़ा दूरी ही रखनी है, और अगर पिए भी तो 150 मिलीलीटर छोटा ग्लास जो होता है, कप, एक कप से भी कम, उतना आप पिए, एक दिन में उससे ज्यादा मत पिए, और क्योंकि इसमें रेशा भी नहीं होता है तो शुगर का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और कैलोरी भी है, तो जितनी शुगर है उतनी कैलोरी है, ज्यादा आप लेंगे तो फिर वजन बढ़ने की बात तो अलग है ही है। तो आप फ्रूट को ध्यान रखें थोड़ा, कि जो बहुत मीठे फ्रूट्स हैं, और मैं आमतौर पर ये कहता हूं कि जो फ्रूट आपको बहुत अच्छा लगा, आपने एक पीस या एक टुकड़ा उसका खाया और आपने कहा वाह आज ये सेब बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत मीठा है। अगर वो मीठा नहीं होता तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, और वो मीठा जो है वो शुगर से है, और तो कुछ चीज मीठा उसको नहीं बनाती है, और वो आपके लिए फिर नुकसानदायक है। तो अगर मीठा बहुत है तो आपने कम खाना है। तो जो जूसी मीठे वाले फ्रूट्स हैं वो आपको बहुत कम खाने हैं, उनको अवॉइड ही करें तो बेटर है। पोर्शन हम कहते हैं 5 पोर्शन खाना चाहिए। तो एक पोर्शन क्या है, फलों में मीडियम साइज फ्रूट जो है, जैसे बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये एक फल, एक पोर्शन हो गया। जो छोटे फ्रूट्स हैं जैसे प्लम्स हैं, आलू बुखारे जो हैं, या कीवी है, या छोटे वाले संतरे जो हैं, सेट्सुमस हैं, वो 2 को हम एक पोर्शन मानेंगे। ग्रेप्स अगर आप खा रहे हैं तो एक, सिर्फ एक मुट्ठी भर, 8-10 दाने ग्रेप्स का एक पोर्शन हो गया, वो उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है, बल्कि ग्रेप्स में शुगर बहुत होती है और आपकी डायबिटीज काफी है, तो आप उसे अवॉइड ही करें। 30 ग्राम जैसा हमने पहले कहा, एक बड़ा चम्मच भर के अगर आप लेते हैं किशमिश, वो हो गई, या अंजीर जो फिक्स हैं, 2 वो हो गई, तो ये 30 ग्राम के आसपास ड्राई फ्रूट एक पोर्शन हो गया। सब्जियों की जब हम बात करते हैं, या बीन्स लेते हैं, या पल्सेस दालें वगैरह लेते हैं, तो उनके 3 बड़े चम्मच भर के जो हैं उसको हम एक पोर्शन मानते हैं। तो अगर आप 5 पोर्शन सब्जियों के खा रहे हैं तो आपको 15 बड़े स्पून लेना है। और ये हम करी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आधी तो मसाला है या तरी है, तो ये हम सिर्फ वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। जी, टमाटर जो है मीडियम साइज का, वो एक पोर्शन के बराबर है। एक प्याज जो है वो एक पोर्शन के बराबर है। स्वीट पोटैटो जो है एक बड़ा, वो एक पोर्शन के बराबर है। शकरकंद जो है, तो ये पोर्शंस हो गए। तो आप जो है इनको खाएं कैसे, लोग, कुछ लोग होते हैं कि भाई 5 पोर्शन तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, हम पूरे दिन में कैसे खाएं। तो आप जब अपना सीरियल खाते हैं या ओट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, आप उसमें फल काट के डाल सकते हैं। आप सब्जियां अपने साथ काम पर ले जा सकते हैं, कैरेट है, पेपर है, सैलरी है, ये सब सब्जियां आप काट कर टिफिन में अपने साथ, जो आपका लंच बॉक्स है, तो बजाय लंच बॉक्स में सैंडविच या वहां पर कोई और स्नैक खरीदने के, आप ये कटे हुए सैलेड लेके जा सकते हैं। और जो भी आप खाना बनाते हैं, चाहे वो आप नॉनवेज ही बना रहे हैं या पास्ता बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप जो है जरूर कोशिश करें कि आप सब्जियां थोड़ी उसमें डालें। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में शॉर्ट में बात हो गई। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स जो सीरियल्स हैं हमारे, जो आटा है, चावल है, गेहूं वाली जितनी चीजें हैं, इसमें अगर आप बहुत फाइन आटा नहीं लेते हैं, बिल्कुल जो फाइन फ्लावर है वो नहीं लेते हैं। आप अगर होल मील फ्लावर या कोर्स वाला जो होता है वो लेते हैं, जो कम छना हुआ है, तो वो अच्छा है आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए ही होते हैं, लेकिन आपको एज ए जनरल रूल ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको गेहूं वाली चीजें और चावल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम करना है। और आमतौर पर मैं अपने मरीजों से ये कहता हूं कि हम लोग की खासतौर पर इंडियन फूड में, जो इंडियन एशियन जो हमारा फूड है, उसमें हमारा सिस्टम क्या होता है कि आपने एक प्लेट भर के दो तीन चार जितनी भी रोटी चपाती नान जो भी आपने लिया, और या आपने प्लेट भरकर एक पूरा चावल लिए, और फिर उस साइड में हम एक कटोरी में थोड़ा सा साइड पे प्लेट की साइड पे थोड़ा सा सैलेड रखते हैं, और एक कटोरी या थोड़ा सा साइड में करी डाल लेते हैं वो सब्जी जो है, और हम इस तरह से खाना खाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको हेल्दी वजन कम करना है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल हाई है वगैरह, तो आप इसको रिवर्स कर दें। आप कटोरी में भर के तो पहले आप वेजिटेबल और सैलेड लें, और उसके बाद अगर आपको शौक है कि नहीं राइस के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप साइड पे थोड़ा सा राइस लें या एक रोटी कम कर दें, एक रोटी खाएं बजाय दो या तीन खाने के। तो इसको खाना है आपको, लेकिन कम खाएं। और दूसरा, होल ग्रेन जो पूरा दाना होता है, चाहे वो पिसा हुआ ही हो लेकिन पूरा हो, तक छना हुआ ना हो, जो हम छान कर जो उसका रफेज निकाल देते हैं वो निकला हुआ ना हो, तो वो फाइबर उसमें होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। दूसरा, इससे क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी भर जाता है, तो जब आप रफ फूड खाते हैं तो आपका पेट जल्दी भर जाता है, तो आप कम खाते हैं, आपका वजन कम करने में आसान करता है, और आपका पेट देर तक भरा भी रहता है। अगर आप फाइन आटे की बनी हुई चीज खाएंगे तो फिर कुछ ही घंटों में आपको फिर भूख लग सकती है, लेकिन वही आप अगर होल ग्रेन वाली फुल बगैर छने हुए आटे की खाएंगे तो आपको देर तक आपका पेट भरा रहता है। साइज की बात करें तो आप, जैसा मैंने बताया, आप साइज को जरूर देखें कि आप न सिर्फ क्या खा रहे हैं बल्कि कितना खा रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है और वो हमने कहा है कि अच्छी नहीं भी है, लेकिन अगर आप बहुत जरा सी खाते हैं टेस्ट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मत खाएं। सीरियल्स, जैसा मैंने बताया, सीरियल्स आप लें तो फाइन, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, ये चॉकलेट वगैरह वाले सीरियल्स जो होते हैं, इनमें जाहिर है कि शुगर ज्यादा होती है, तो आप होल ग्रेन सीरियल लें जिनमें, और ब्रेड अगर आप ले रहे हैं तो सीडेड ब्रेड लें। आप जब अगर ये बेक्ड पोटेटो खाते हैं या स्वीट पोटेटो खाते हैं तो आप उसकी स्किन भी साथ में लें, स्किन को छोड़ ना दें। बेक्ड पोटेटो हम खाते हैं तो देखते हैं अक्सर लोग पूरी स्किन छोड़ देते हैं, वो भी खाएं, उसमें फाइबर है जो कि आपको फायदा करेगा। आप जब बेक करते हैं या घर पे चपाती या नान वगैरह बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो उसमें होल मील फ्लावर डालें जो छना हुआ नहीं होता है। अगर आप राइस ले रहे हैं या पास्ता खा रहे हैं तो ब्राउन राइस लें या ब्राउन पास्ता लें। तो ये आटा और चावल और इससे बनी हुई चीजों की बात हुई। डेयरी जो दूध से बनी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कोशिश आप करें कि फुल फैट ना लें। तो दूध अगर आप पिए, अच्छा है आपके लिए एक या दो ग्लास दूध पीना, लेकिन आप कोशिश करें कि जो दूध होते हैं, यहां पर तीन तरह के होते थे ट्रेडिशनली, अब तो चार तरह के आने लगे हैं, तो जो ब्लू मिल्क है जिसका ब्लू ढक्कन होता है वो फुल फैट है, उसमें 4% के आसपास फैट होता है। जो ग्रीन है वो हाफ फैट होता है, लो फैट जिसे कहते हैं, उसमें 2% के आसपास फैट होता है, और जो रेड वाला होता है उसमें कोई फैट नहीं होता है, वो जीरो फैट के, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। तो कोशिश करें कि आप रेड या ग्रीन वाला लें और ब्लू वाला ना लें। और अभी तो एक 1% का इसके बीच में आने लगा है, जिसका वो पर्पल या ऑरेंज सा एक ढक्कन आने लगा है, उसमें 1% फैट होता है, तो वो भी है। तो आप जो है लो फैट वाला, और जिसमें, और अगर कोई दूध से बनी हुई और चीजें हैं या आप कुछ ले रहे हैं तो आप देखें कि लो शुगर या नो शुगर वाली चीजें हों, तो उसमें तो आपको फैट भी कम मिलेगा, शुगर भी कम मिलेगा, कैलोरीज भी कम मिलेंगी, तो आप इसमें जो है, और चीनी से मिली हुई चीज, अगर आप दूध की चीज ले रहे हैं, योगर्ट्स ले रहे हैं, तो आप वो देखें कि जिनमें शुगर ऊपर से ऐड की हुई ना हो। तो आप सेमी स्किम या स्किम मिल्क, लो फैट या नो फैट वाला मिल्क लें। आप योगर्ट ले सकते हैं, और योगर्ट में भी हम लोग को वो इंडियन स्टाइल खाने के है जिसमें काफी फैट होता है, लेकिन जो ग्रीक योगर्ट होता है और लो फैट ग्रीक योगर्ट होता है, उसका टेस्ट जो घर का हमारा खूब फैट वाला दही होता है उससे काफी मिलता जुलता है, तो वो आप अपने सुपर स्टोर से, जहां से भी आप शॉपिंग करते हैं वहां से लें लो फैट ग्रीक योगर्ट, और आप पाएंगे कि उसका टेस्ट काफी अच्छा आपको लगेगा, जो इंडियन, हमारा एशियन जो टेस्ट है उसके हिसाब से। आप जब चीज वगैरह खाते हैं तो उसको थोड़ा कम करें। आप जो कॉटेज चीज होता है, जो पनीर की तरह का चीज होता है, वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप जैसे बेक पोटेटो खा रहे हैं, या आप वो बिस्किट्स या क्रैकर्स के ऊपर चीज रख के खाते हैं, तो आप उसमें ये जो है सॉफ्ट कॉटेज चीज लेके खाएं तो वो आपको फैट वगैरह कम होगा उसमें. चीज अगर आप खाते हैं तो उसको आप ग्रेट कर लें, कद्दूकस कर लें तो पीसेस काटने के बजाय. उससे सिर्फ ये होता है कि ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा भी डालेंगे तो वो ज्यादा लगता है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैंने खा लिया. लेकिन अगर आप पीस काटेंगे तो आप ज्यादा खाएंगे उतने ही में ही, तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है.
कुछ लोग जैसे कि चीज स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं या चीज स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोसेस्ड वगैरह होती है, तो वो कितनी सेफ है?
तो उसमें सेफ तो है, लेकिन उसमें फैट आपको देखना है. जी हाँ, डायबिटीज के लिए उसमें आपको देखना है कि फैट कितना है, क्योंकि ज्यादा फैट आपको वजन कम करने में फायदा कर रहा है तो जरूरी है कि आप वजन कम करें. तो ना सिर्फ शुगर बल्कि आपको फैट का भी ध्यान देना है. तो अगर आप लो फैट वाले लेंगे तो उसमें जाहिर है कि आपको कैलोरीज कम मिलेंगी. प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन आप हमको डाइट में मिलता है बीन्स में, पल्सेस में, दालों में, नट्स में, मीट से, मांस से, फिश से या अंडों से. तो इसमें अगर आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं तो बाकी चीजें भी हैं. नट्स हैं जो हमारे ये काजू और मूंगफली या बादाम वगैरह और दूसरे नट्स हैं. दालें हैं, बीन्स कई तरह की है. तो बीन्स हम लोग के अगेन एशियन कुकिंग में जो घर पे हम बीन बनाते हैं वो तो सिर्फ एक राजमा ही है, किडनी बीन है और दूसरी बीन्स कम ही बनाई जाती हैं, बनती हैं. लोबिया है लेकिन कम बनता है. लेकिन यहां पर अगर आप सुपरमार्केट्स में जाएं तो आप देखेंगे कैंस में कई तरह की बीन्स मिलती हैं और उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं और वो काफी फैट में लो, कैलोरी में लो लेकिन प्रोटीन में काफी हाई होते हैं. उनको आप सब्जियों में डाल सकते हैं जब आप करीज बनाते हैं, या आप सैलेड्स में डाल सकते हैं तो उसका आप जरूर इस्तेमाल करें. तो ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर आप फिश खाते हैं तो ऑयली फिश खाएं, ऑयली फिश यानी सैल्मन, मैकरल वगैरह, और हफ्ते में दो बार जरूर कोशिश करें कि आप उसको खाएं तो उससे आपको अच्छा वाला फैट मिलेगा. टोफू जो चाइनीज पनीर होता है वो काफी अच्छा होता है, फैट में लो होता है, प्रोटीन में हाई होता है, सोया से बनता है वो, तो वो आप ले सकते हैं. अंडे काफी अच्छे होते हैं. बीच में अंडों के ऊपर बहुत बुरी रिपोर्ट्स आई थी कई साल पहले लेकिन वो सब खारिज हो चुकी हैं और ये काफी अच्छा होता है. अंडा आप जरूर खाएं अगर आप खाते हैं तो ये आप नट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा मुट्ठी भर नट्स आप, या सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं आजकल काफी तरह के मिलते हैं शॉप्स में, तो वो आप अपने सैलेड में या एज ए स्नैक आप काम पर या स्कूल में अपने साथ ले जा सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं.
आखिरी एक मिनट में आपको रोक कर मैं कहना चाहती हूँ कि रोक रही हूँ. मैंने आपने जब अंडे वगैरह का जिक्र किया, अंडे, फिश, वीगन लोग जो दूध, डेयरी, पोल्ट्री को हाथ
नहीं खाते उनके लिए यही जो चीजें बताई हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आटा चावल वगैरह लेकिन होल ग्रेन बजाय इसके कि वो, तो वो उससे ले सकते हैं. चाय कॉफी थोड़ा बहुत कोई बुराई नहीं है, बहुत ज्यादा आप ना लें, बहुत ज्यादा कैफीन कहा गया है कि अच्छी नहीं होती है. फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं कैन में या बॉटल्स में, खास तौर पर फ्रूट जूस वाली ड्रिंक्स में काफी हाई शुगर होता है, तो हमेशा आप लेबल देखें कि उसमें कितना शुगर है और तब आप लें. आजकल 5% से ऊपर की शुगर को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है लेकिन डायबिटिक लोगों को तो 0% शुगर की ड्रिंक्स की तरफ चलना चाहिए. नमक आपको बहुत लिमिटेड खाना है, ऊपर से नहीं डालना है. जो खाने में डाला है ये नहीं कह रहा हूं कि आप फीका खाना खाएं, ऊपर से एक्स्ट्रा मत डालें किसी भी चीज पर. और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो बने बनाए फूड, टेकअवेज या पैकेज्ड फूड्स जो आते हैं, उनमें आमतौर पर फैट भी ज्यादा है, शुगर भी ज्यादा है और सॉल्ट भी ज्यादा है, उसको अवॉइड करें.
बस अब एक आखिरी मिनट रह गया हमारे पास.
एक मिनट मेंबर जी, यही कि डायबिटीज के ऊपर इतनी बात की, डायबिटीज के हम कई हफ्तों तक और कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अब हम. आपके कोई सवाल हो तो आप भेज दें, हम जरूर उनको, कोई प्रोग्राम और भी किसी सब्जेक्ट पर होगा तो भी डायबिटीज पर अगर सब क्वेश्चन आएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे. अगले हफ्ते हम लोग, अब छुट्टियां आने वाली हैं कुछ ही हफ्तों में, लोग प्लानिंग कर रहे हैं अपने समर हॉलीडेज की, तो हम लोग ट्रेवल हेल्थ की बात करते हैं कि अगर आप यूके से बाहर कहीं जा रहे हैं, खासतौर पर एशिया, अफ्रीका वगैरह जा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, अभी से आप तैयारी करें ताकि अब जब आप जुलाई अगस्त में छुट्टी पर जाएं तो आपकी तैयारी पूरी हो.
स्पेशली वो जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत,
इंजेक्शन वगैरह की जरूरत है, तो आप इस प्रोग्राम के भी वेट ना करें, अभी ही आप अपने जीपी से, क्योंकि इस टाइम पर जीपी सर्जरीज में 6 से 8 वीक की वेटिंग लिस्ट ट्रैवल वैक्सीन के लिए कोई कम नहीं है, और अगर उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर वो आपको नहीं दे पाएंगे, आपको प्राइवेट लेनी पड़ेगी जो कि काफी महंगी पड़ जाती है.
क्योंकि मुझे लगता है अगले हफ्ते, जैसा आपने कहा, तो अगले हफ्ते ठीक रहेगा क्योंकि बेशक छुट्टियां मिड जुलाई के आसपास होती हैं, बट क्योंकि टिकट की प्राइस वगैरह भी रहती है जिसके चलते कुछ
जी, जी, जिनके प्लान है उन्होंने अब तक तो प्लान कर लिया होगा मुझे लगता है जी.
तो कुछ लोग दो हफ्ते पहले भी छुट्टी ले लेते हैं बच्चों की, तो उनको दो हफ्ते पहले भी ले जाते हैं. तो जाहिर बात है अगर वैक्सीनेशन कुछ हफ्ते पहले लगानी है
और जी जी बिल्कुल उसके लिए तो ऑलरेडी डिलेड है वो जल्दी से जल्दी जी.
सो सूनर द बेटर. थैंक यू सो मच कि आप हर हफ्ते आते हैं अपना इतना कीमती समय निकालकर और इतनी सारी जानकारी आप देते हैं. एंड वी ऑल रियली अप्रिशिएट इट. सरोज चौहान जी की तरफ से भी आपको थैंक यू कहा है उन्होंने.
बहुत शुक्रिया.
और जो रेगुलर्स हैं उनकी तरफ से भी थैंक यू. सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगी लेकिन बस इतना ही कह सकती हूँ उन सबकी तरफ से आपको थैंक यू और मेरी तरफ से भी थैंक यू कि आप हर हफ्ते इतना मतलब अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं. एंड बीइंग ए डॉक्टर वी नो इट्स नॉट इजी. एक एक पल जो है कितना कीमती.
नहीं मर्जी मुझे अच्छा लगता है पब्लिक का कुछ अगर इससे भला होता है तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है.
नहीं बेटा आप आते हैं आप इतना सोचते हैं और बिना किसी के जितना मतलब है आप आते हैं तो वाकई बेलॉस जिसे हम कहते हैं. सो वी रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक.
जी अम्मा जी
हैव अ लवली वीक. एंड अब डॉक्टर साहब से तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी लेकिन मैं लौट कर आती हूँ 12 बजे की न्यूज के बाद रमजान स्पेशल ले.